नमस्कार भारत, तारीख 16 मार्च, दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 5 अमरीकी राज्यों में हो रहे हैं राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में प्राइमरी चुनाव। बिल्डर अब नहीं कर पाएंगे मनमानी। लोकसभा ने भी पारित किया रियल एस्टेट विधेयक।
ग्राहक है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी लाता है रियल एस्टेट बिजनेस में। तो रियल एस्टेट में पहली बार एक रेगुलेटर बन रहा है और वो हर स्टेट में होएगा।
T20 विश्व कप के पहले सुपर 10 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया।
बहुत बड़ी मछली को फंसा लिया है जाल में विराट कोहली। सन्नाटा मैदान में 39 पर आधी भारतीय टीम पेविलियन में।
लेकिन महिला क्रिकेट टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। इनका भी कश्मीर में आज राधिका कौल की चिट्ठी। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। अमेरिका के 5 राज्यों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, फ्लोरिडा, इलिनॉय और मिसूरी में होने वाले ये चुनाव भी अहम माने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलरी क्लिंटन को उम्मीद है कि इसमें वे अपनी पार्टी से उन्हें चुनौती देने वाले बर्नी सैंडर्स को पीछे छोड़ देंगी, जबकि रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप भी जीतने की पूरी कोशिश में हैं। ब्रसल्स में अधिकारियों के मुताबिक पेरिस हमले से जुड़े एक सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर गोली चलाने वाले एक व्यक्ति की पुलिस की गोली से मौत हो गई है। ब्रसल्स के एक छोटे इलाके फॉरेस्ट में एक अपार्टमेंट से पुलिस पर गोली चलाई गई, जिसके बाद पुलिस ने इस इमारत को घेर लिया। इस गोलीबारी में 4 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। ब्रसल्स में बीबीसी के संवाददाता का कहना है कि कुछ संदिग्ध घिरी हुई इमारत की छत से भाग गए। इलाके में अब भी कड़े सुरक्षा प्रबंध हैं। फ्रांस का कहना है कि वो बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडुगू में अर्धसैन्य पुलिस का एक रैपिड रिएक्शन दल रखेगा। अगर पश्चिमी अफ्रीका में इस्लामिक चरमपंथी हमला दोबारा होता है तो ये दल हस्तक्षेप कर सकेगा। रविवार को आइवरी कोस्ट के ग्रैंड बसम में बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 18 लोग मारे गए थे, जिनमें 4 फ्रांसीसी नागरिक भी थे। फ्रांस के गृहमंत्री बेरनार काजनोव ने अबिजान में ये घोषणा की। हमने फ्रांसीसी पुलिस फोर्स के जवान यहाँ ओगाडुगू में तैनात करने का फैसला किया है, ताकि इस क्षेत्र में अगर ऐसा कोई हमला हो तो वो तत्काल कार्रवाई कर सकें और इस संबंध में प्रशिक्षण भी दे सकें। ये थे बेरनार काजनोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी सॉफ्टवेयर कंपनी एप्पल ने कहा है कि अमरीका के पूर्वज एक फ़ोन के सुरक्षा एन्क्रिप्शन को तोड़ने को लेकर अमरीकी सरकार और एप्पल के बीच चल रहे तनाव से स्तंभित रह जाते। FBI चाहती है कि एप्पल सैन बर्नार्डिनो में हुई गोलीबारी में शामिल एक बंदूकधारी के आईफोन को अनलॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करे, जबकि एप्पल की दलील है कि न्याय विभाग की मांग को मान लेने से एक खतरनाक कानूनी मिसाल कायम हो जाएगी। अगले हफ्ते इस मामले पर अदालती कार्रवाई शुरू होगी। उत्तरी यमन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक हवाई हमले में 40 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। उनके मुताबिक मुस्तबा जिले के एक बाजार में यह हमला हुआ। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी मेडिसिन सान फ्रंटियर ने कहा कि नजदीक ही स्थित उनके एक अस्पताल ने दर्जनों घायलों को दाखिल किया था। यह इलाका हूती विद्रोहियों का गढ़ माना जाता है। हूती विद्रोही यमन सरकार और सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना से लड़ रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से करते हैं, जहां की अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के उम्मीदवार तय करने के लिए प्राइमरी जो चुनाव हो रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना, ओहायो, इलिनॉय, फ्लोरिडा और मिसूरी प्रांतों में मतदान खत्म हो चुका है। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं वॉशिंगटन से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय को। ब्रजेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि मतदान हो चुका है और मतगणना चल रही है, सबसे पहले हालत क्या है?
जी बिल्कुल, लगभग एक घंटे पहले मतदान खत्म हुआ और गिनती पूरे जोर शोर से चल रही है इस वक्त। एग्जिट पोल्स और आरंभिक रुझानों के आधार पर जो प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें फ्लोरिडा में रिपब्लिकन्स की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित किया गया है। वहीं आरंभिक रुझानों और एग्जिट पोल्स के आधार पर डेमोक्रेट्स में हिलरी क्लिंटन को 3 राज्यों में अब तक विजेता घोषित किया जा चुका है, यानी नॉर्थ कैरोलिना, फ्लोरिडा और ओहायो में। ट्रंप ने मार्को रूबियो को उन्हीं के घर यानी फ्लोरिडा, जहां के वो सेनेटर हैं, वहां मात दी है और उन्होंने उम्मीदवारी की रेस से अपना नाम, यानी मार्को रूबियो ने अपना नाम अब वापस ले लिया है। ये आज की सबसे अहम खबर है कह सकते हैं आप, क्योंकि एक वक्त था जब माना जा रहा था कि वो मार्को रूबियो रिपब्लिकन पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं, युवा हैं और उम्मीदवारी के अहम दावेदार हैं, लेकिन आज उनका ये अभियान खत्म हुआ। अब रिपब्लिकन रेस में 3 उम्मीदवार रह गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप, टेड क्रूज और जॉन कैसिक। जॉन कैसिक के लिए एक अच्छी रात रही है, क्योंकि ओहायो जहां के वो गवर्नर है, वहां उनको अब से कुछ ही देर पहले विजेता घोषित होने का, आरंभिक रुझानों और एग्जिट पोल्स के आधार पर विजेता घोषित किया गया है, और ये उनके लिए एक उनका जो अभियान है उसको एक तरह से ऑक्सीजन दे रहा है यहाँ की जीत, क्योंकि अभी तक किसी राज्य में उन्हें जीत नहीं मिल पाई थी, लेकिन अभी 3 और राज्यों की रुझान और प्रोजेक्शन आने बाकी है, तो देखने वाली बात होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का उसमें कैसा प्रदर्शन रहता है।
बिल्कुल, सबसे ज्यादा नजर अगर किसी पर है तो डोनाल्ड ट्रंप पर सबसे ज्यादा हम सबकी नजर रहती है। हिलरी क्लिंटन के बारे में आपने बताया कि 3 राज्यों में वो आगे हैं।
जी हाँ बिल्कुल, आप काफी अच्छी रात कही जाएगी हिलरी क्लिंटन के लिए। ये फ्लोरिडा बहुत बड़ा राज्य है और वहां उनकी काफी अच्छी जीत हुई है बर्नी सैंडर्स के खिलाफ। अब परिणामों के आने से पहले लग रहा था कि कहानी में कुछ ट्विस्ट सा आ रहा है, क्योंकि बर्नी सैंडर्स काफी टक्कर दे रहे थे एग्जिट पोल्स की माने तो, और वो काफी लग रहा था कि करीबी मैच, कांटे की टक्कर होने जा रहा है, लेकिन नॉर्थ कैरोलिना और खासतौर से ओहायो में जो उनकी जीत हुई है ये काफी अहम है, क्योंकि ओहायो का जो पड़ोसी राज्य है मिशिगन, वहां वो हार गई थी बिल्कुल 1 या 1.5 पॉइंट से, तो लग रहा था कहीं उसका असर हो सकता है ओहायो पर हो, लेकिन इन 3 राज्यों में जीतने के बाद आप काफी हद तक कह सकते हैं कि उनकी गाड़ी अब काफी रफ्तार पकड़ चुकी है। बर्नी सैंडर्स के लिए अब उनको पकड़ पाना उम्मीदवारी की रेस में काफी मुश्किल होगा, लेकिन हाँ वो चोट एक तरह से आप कह सकते हैं कि पहुंचाते रहेंगे, और अभी
पत्ता साफ,
इस पत्ता, रेस से हटने का कोई इरादा नहीं,
मतलब पत्ता साफ नहीं हुआ है बर्नी सैंडर्स का।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कागज पर अगर आप कागज कलम लेकर के बैठे, तो कहीं से उनके लिए हिलरी क्लिंटन को पकड़ पाना अब संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन जाहिर है कि राजनीति में आप कभी भी कुछ नहीं कह सकते, और इसलिए उन्होंने ये ऐलान कर रखा है कि आखिरी वोट यानी कैलिफोर्निया में जब जून 7 को चुनाव होंगे प्राइमरीज के, तब तक वो इस रेस में शामिल रहेंगे।
जी ब्रजेश उपाध्याय, बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे लगता है कि अगले कार्यक्रम में जब हम आपसे संपर्क साधेंगे तो स्थितियां और बेहतर और स्पष्ट हो पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
रुख भारत का करते हैं। नए मकान खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब बिल्डर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं कर सकेंगे, साथ ही वो लुभावने वादे भी नहीं कर पाएंगे, और उन्हें तय समय सीमा के भीतर मकान भी बनाकर देना होगा, क्योंकि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2016 कल लोकसभा में पारित हो गया। राज्यसभा इस पर पहले ही मंजूरी की मुहर लगा चुकी है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि इससे उपभोक्ता और बिल्डर दोनों के हितों का संरक्षण होगा। संसद में क्या कुछ हुआ, सुनिए वात्सल्य राय से।
आई थिंक द आईज हैव इट, द आईज हैव इट, द मोशन इज अडॉप्टेड एंड द बिल इज पास्ड।
लोकसभा ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2016 पर कल मंजूरी की मुहर लगा दी। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने वाला ये बिल राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि कानून के दायरे में ग्राहक और बिल्डर दोनों आएंगे। उन्होंने बिल पास होने के बाद सांसदों को धन्यवाद दिया।
थैंक ऑल द मेंबर्स फ्रॉम ऑल साइड फॉर द होल हार्टेड सपोर्ट।
इस बिल को समर्थन देने के लिए मैं सभी पक्षों के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मुझे यकीन है कि ये बिल लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसमें भविष्य में जो भी सुधार की जरूरत होगी, हम सामूहिक रूप से उस पर विचार करेंगे और उसे आगे ले जाएंगे। ये थे वेंकैया नायडू के शब्द। रियल एस्टेट क्षेत्र के विशेषज्ञों का कहना है कि कानून बनने के बाद इस क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी। रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के डीजी रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरआर सिंह कहते हैं,
रियल एस्टेट बिजनेस ट्रांसपेरेंट बिजनेस नहीं था। इसमें खास करके जो ग्राहक है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। बेसिकली ये ट्रांसपेरेंसी लाता है रियल एस्टेट बिजनेस में। तो रियल एस्टेट में पहली बार एक रेगुलेटर बन रहा है और वो हर स्टेट में होएगा। ये रेगुलेटर जो है वो रेगुलेट करेगा टोटल बिजनेस को, टोटल कंस्ट्रक्शन को, डेवलपमेंट को, जहाँ जिस जो एरिया उसके अंडर में होगा उस एरिया में।
राज्य स्तर पर गठित होने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी रिहायशी और कारोबारी दोनों तरह के प्रोजेक्ट पर नजर रखेगी। बिल्डर को खरीदार को प्रोजेक्ट संबंधी और काम कब तक पूरा होगा इसके बारे में सटीक जानकारी देनी होगी। बिल्डर को उपभोक्ताओं से मिलने वाली रकम का 70% हिस्सा अलग बैंक में रखना होगा, जिसका इस्तेमाल सिर्फ निर्माण कार्य में ही हो सकेगा। वहीं अगर प्रोजेक्ट में देरी होती है तो बिल्डर उसी दर पर ब्याज देगा जिस दर पर वो ग्राहकों से पेमेंट में देरी पर ब्याज लेता है। ब्रिगेडियर सिंह ने बताया,
अगर ग्राहक को डिले करता है पेमेंट को इंस्टॉलमेंट देने में तो उसका बड़ा हैवी रेट ऑफ इंटरेस्ट था, मे बी 12% से 18% के बीच में डेवलपर्स लेते थे। अब जो है इस बिल के अंदर ऐसा है कि जो इंटरेस्ट डेवलपर बायर से लेता है वही इंटरेस्ट वो बायर को भी देगा अगर प्रोजेक्ट डिले होता है डेवलपर के थ्रू में। तो एक अच्छा, मतलब दोनों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा।
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का आदेश नहीं मानने पर जुर्माने और सजा का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इस बिल को लेकर डेवलपर्स ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं। उनकी चिंताओं के बारे में ब्रिगेडियर सिंह कहते हैं,
जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करने का तरीका है वो बहुत लंबा है और उसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व है, जिससे कि बहुत टाइम लगता है। और टाइम लगने से ये होता है कि प्रोजेक्ट जो है डिलेज हो जाता है, तो पैसा जो इन्वेस्टमेंट डेवलपर का है उसपे उसका जो इंटरेस्ट उस पर लगता जाता है और प्रोजेक्ट का कास्ट बढ़ जाता है। तो डेवलपर का ये भी कहना था कि एक सिंगल विंडो इसके लिए बनाया जाए।
लेकिन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का कहना है कि ये बिल बिल्डर्स और डेवलपर्स के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि वो बिल्डर्स की समस्या सुनने को तैयार हैं और उन्हें विकास में भागीदार बनाना चाहते हैं। वात्सल्य राय, बीबीसी दिल्ली।
तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2016 कल लोकसभा में पारित हो गया। आज संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन है। आधार बिल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष बटे हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा में ये विधेयक बीते हफ्ते पास हो चुका है। इसे वित्त विधेयक के तौर पर पेश किया गया था, यानी मनी बिल। कांग्रेस समेत कई दलों ने इसे मनी बिल यानी कि वित्त विधेयक के तौर पर पेश किए जाने को सही नहीं बताया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि उन्हें बिल को लेकर आपत्ति क्या है।
हमारी जो आपत्ति है बिल पर नहीं है। बिल पर तो हम तब आपत्ति करेंगे जब हम उस बिल के विस्तार से बहस करें, लेकिन सरकार की जो रणनीति बनी उन्होंने आधार बिल को एक मनी बिल बनाकर लोकसभा में इसलिए पेश किया कि राज्यसभा में वो विपक्ष का सामना करने से बचना चाहती। हमारी मुख्य आपत्ति इसी बात पर है। संभवतः वह बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा। चूंकि वो मनी बिल के तौर पर पेश किया गया है तो इसलिए उसके ऊपर राज्यसभा में चर्चा तो हो सकती है, लेकिन उस पर राज्यसभा में कोई वोटिंग नहीं हो सकती, उसका पास करवाना जरूरी है। इस तरह से राज्यसभा जैसी महत्वपूर्ण सदन को बाईपास करने की जो कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, वो गंभीर आपत्ति का विषय है।
यहाँ पर सरकार का ये भी कहना है कि ये बिल जो इसका कॉन्सेप्ट था ये यूपीए सरकार का ही था। फिर आपको क्या लगता है कि इसको मनी बिल के तौर पर लाने की क्या वजह हो सकती
है? हमने भी तो ये बिल लाया था और जब हमने लाया था तो हमने तो इसको मनी बिल के रूप में पेश नहीं किया था। इसमें मनी बिल की जो सामान्य शर्तें हैं वो पूरी होती ही नहीं, इसके बावजूद जबरन उसको मनी बिल बनाया केवल इसलिए गया है कि राज्यसभा में विपक्ष चूंकि सशक्त है और वहाँ विपक्ष का सामना करना नहीं चाहती है सरकार, इसलिए वो जानबूझकर राज्यसभा को बाईपास करना चाहती है।
लेकिन जीएसटी समेत कई ऐसे बिल हैं जिसमें राज्यसभा में विपक्ष और सरकार दोनों के बीच में तालमेल होना जरूरी है, तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी?
हमने हमेशा हर बिल के ऊपर सकारात्मक रवैया अपनाया है। जीएसटी समेत सभी बिलों पर हमने उनके प्रारूप को बिल के पढ़ने के बाद उसमें हमारी जो अपनी आपत्तियां थी वो आपत्तियां हमने सरकार के सामने रखी। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि विपक्ष को वो विश्वास में ले। सहयोग अगर विपक्ष से लेना है तो विपक्ष को विश्वास में लेना होता है। हमने 10 वर्षों तक विभिन्न बिलों पर, कानूनों पर विपक्ष के लोगों के साथ बैठकर चर्चा की, उनकी राय के अनुसार हमने यदि परिवर्तन करना आवश्यक हुआ तो परिवर्तन किए। जो हम करते आए हैं वही हम इनसे कह रहे हैं, बिल्कुल हम पास करेंगे। हमने जीएसटी या कोई बिल आंख मूंद कर केवल विरोध करने के लिए हमने विरोध नहीं किया, हमने कारण बताए हैं और उन कारणों का हमने समाधान चाहा।
ये थे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को कल 2 दिनों की यानी कि 17 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें सोमवार को महाराष्ट्र सदन के निर्माण में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। मुंबई से अश्विन अखोर की रिपोर्ट।
मंगलवार दोपहर भुजबल को सेशंस कोर्ट में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने भुजबल को 3 दिन की हिरासत में भेजने की मांग की, लेकिन भुजबल के वकील ने इसका विरोध करते हुए अदालत को आश्वासन दिया कि निदेशालय के अधिकारी जब चाहे पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। चाहे दिन हो या रात, भुजबल पूछताछ के लिए निदेशालय के दफ्तर में हाजिर हो जाएंगे। अदालत में अपना पक्ष रखते हुए भुजबल भावुक हो गए थे। निदेशालय के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भुजबल तक तफ्तीश में सहायता नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। निदेशालय अधिकारियों ने भुजबल से उनके आय के स्रोत के बारे में पूछा, जिसका वह जवाब नहीं दे सके। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने भुजबल को 2 दिन के लिए प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया। भुजबल के वकील ने इस बारे में कुछ भी बोलने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह मामला अदालत में है, लेकिन उन्होंने अदालत में भुजबल के भावुक होने की पुष्टि की। भुजबल की गिरफ्तारी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि पार्टी भुजबल के साथ है और उनके लिए न्यायालयीन लड़ाई लड़ी जाएगी। शरद पवार ने कहा,
आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट द लीगल साइड, बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल फाइट दिस लीगल बैटल।
मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि ये राजनीतिक बदलाव लेने की बात है या नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम कानूनी कार्रवाई का सामना करेंगे और मुझे उम्मीद है कि एक उचित फैसला किया जाएगा। सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ही पता चलता है कि इस सब के पीछे कौन है।
ये थे शरद पवार। भुजबल की गिरफ्तारी के खिलाफ मंगलवार दिन भर राज्य के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस बारे में हमने भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय से बात की।
सबसे पहले तो इसको पॉलिटिकल वेंडेटा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस ईडी के पास प्रूफ थे उस प्रकार से ईडी ने उनकी इंक्वायरी की। और सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में कि ईडी इस वक्त कोर्ट रिपोर्टिंग करिए, कोर्ट में कहने के बाद उनकी इंक्वायरी तेज हुई है। विषय सारे विषय पे कोर्ट के हिसाब से चल रहा है और पॉलिटिकल वेंडेटा इसमें बिल्कुल नहीं।
ये थे केशव उपाध्याय। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र जारी है। कल दिन भर दोनों सदनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्यों ने भुजबल की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से विधान परिषद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया।
छगन भुजबल की गिरफ्तारी पर मचा घमासान। कार्यक्रम में अब अखबार के पन्ने पलट लेते हैं। प्रगति सक्सेना मौजूद हैं। प्रगति, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी मोहन, आज जो सभी अखबारों में खबरें प्रमुखता से ली गई हैं, उसमें एक तो ये है कि पाक राजनयिकों पर रोक लगा दी है कोलकाता जाने के लिए। ये वो 5 राजनयिक हैं जिनको बताया जाता है कि ISI और सेना से जुड़े हुए हैं। दूसरा, यूपी के सांसदों के साथ बैठक में मोदी और अमित शाह ने सलाह दी है कि सोशल मीडिया पे जो प्रचार है उसको गंभीरता से लिया जाए, और सोशल मीडिया में हनक से तय होगा भाजपा का टिकट। ये दैनिक जागरण की हेडलाइन है। उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं कि आप जो है एक तो सोशल मीडिया पे सक्रिय हों, और दूसरा एक आजीवन सहयोग निधि है उसमें 5 लाख रुपये जमा कराएं। जनसत्ता में एक खबर है कि बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार हैक हो गया है और उड़ाए 10 करोड़ डॉलर। केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। 500 दवाओं पर प्रतिबंध की तैयारी है, ये सभी अखबारों में खबर है।
मुख्य खबर यही है जी, केंद्र सरकार 6000 से अधिक दवाओं की जांच कर रही है।
और मदर टेरेसा को सितंबर में संत की का दर्जा मिल जाएगा। और माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, ये भी सभी अखबारों में खबर है। दूसरी खबर, बहुत दिलचस्प खबर यह है कि दिल्ली के सीएम ने, केजरीवाल ने, मंत्री संदीप कुमार को पत्नी के नाम का पत्थर लगवाने पर फटकारा। उन्होंने एक सरकारी स्कूल के शिलान्यास में अपनी पत्नी के नाम का पत्थर लगवा लिया था। दूसरी एक खबर जो सभी अखबारों में है वो है कंगना रितिक की हेट स्टोरी कानूनी जंग में बदली। दोनों ने एक दूसरे को कानूनी
खबर, एक खबर जिसका और जिक्र कर दूं कि गुमनामी बाबा जो कि काफी नाम प्रसिद्ध हो चुके हैं, उनके बक्से में बोस के माँ बाप की फोटो, ये हिंदुस्तान की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति आपका। कार्यक्रम में अब वक्त है कश्मीरी पंडितों पर हमारी विशेष श्रृंखला का। कल आपने राहुल पंडिता से कश्मीर में उनके बचपन की यादें सुनी, लेकिन पंडितों के पलायन के बाद कश्मीर से बाहर पैदा हुई पीढ़ी के लिए घर के मायने क्या हैं? राधिका कौल कश्मीरी पंडितों की उसी पीढ़ी की हैं जो कि कश्मीर से बाहर पैदा हुई। उनकी शिक्षा रांची और दिल्ली में हुई और बाद में येल विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की डिग्री ली। इन दिनों वो दिल्ली में टीच फॉर इंडिया अभियान से जुड़ी हैं। इनका भी कश्मीर श्रृंखला के तहत आज सुनिए राधिका कौल की चिट्ठी।
तुम्हारी नाक कश्मीरी नहीं है, मेरी दीदी अक्सर मुझे टोका करती थी। तुम्हें गांठ गोभी खाना भी नहीं पसंद और तुमने तो कभी कश्मीर देखा ही नहीं है। फिर बताओ तुम कैसे कश्मीरी हुई? नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मैं कहा करती थी। मेरे रांची के बचपन में कश्मीर एक आकृतिहीन जगह थी। मुझे पता था कि मेरे परिवार के जड़ उस भूमि में थे और मुझे ये भी पता था कि मेरे घर की सारी अनूठी बातें, हमारी भाषा, हमारा खान पान, मेरी माँ के फेरन, एक सुंदर लेकिन धूल से लदी हुई कांगड़ी और माता खीर भवानी की तस्वीर, ये सब कश्मीर से आए थे। लेकिन कश्मीर कैसा दिखता था, लोग वहाँ कैसे रहते थे, मुझे इसका कोई आभास नहीं था। रांची मेरा घर था, मुझे ये लगता था कि हम जिंदगी भर यहीं रहने वाले थे। फिर एक दिन अपने माता पिता से बात करते समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि रांची तो दूर की बात, शायद मेरा घर किसी एक जगह पे था ही नहीं। 20 साल रांची में रहने के बावजूद मेरे माता पिता रांची को अपना स्थायी घर मानते ही नहीं थे। कुछ सालों में हम दिल्ली जाने वाले थे क्योंकि मेरी पढ़ाई के लिए वही बेहतर था। रांची हमारी ज़मीन थोड़ी है, वो मुझे अक्सर याद दिलाते थे। स्वाभाविक तौर पर मैं सोचने लगी कि फिर हम कश्मीर क्यों नहीं जाते। उन्हीं दिनों मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था और रोज़ कश्मीर में आतंकवाद की खबरें पढ़ने को मिलती थी। क्या यही बात थी? गर्मी की छुट्टियों में मेरी सारी सहेलियां अपने गांव जाती थीं। उन वर्षों में अवचेतन रूप से मुझे सिर्फ एक ज़मीन की तलाश थी, एक ऐसी ज़मीन जिसे मैं अपना बोल सकूं। इस तलाश में मैंने धीरे धीरे अपने मन के कश्मीर को बनाया। अपनी नानी दादियों की कहानियों से, अपने छिने हुए घर, श्रीनगर की सड़कें, शरद के चिनार, शंकराचार्य की घंटियाँ, जहलम के पुल, डल के शिकारे, गुलमर्ग की बर्फ देखने की कोशिश की। जब माँ पापा ने मेरी ख्वाहिश पूरी की और मुझे 3 दिनों के लिए कश्मीर ले गए, जहाज से हिमालय के ऊंचे हिमाच्छादित पर्वतों को देख मैंने खुद को रोते हुए बोला कि अगर यहाँ मर भी जाऊँ, अगर आतंकवादियों ने मार भी दिया तो कोई बात नहीं। तब से मैं कश्मीर 4 बार गई हूँ। जैसे बड़ी होती गई वैसे समझ में आया कि हम अपनी भूमि को छोड़ के गए ही क्यों। एक बार गुलमर्ग में एक सहायक ने मेरी दीदी और मुझसे मुस्कुराते हुए यही सवाल पूछा, आप क्यों भाग गए? हमें भगाया गया था, मैंने कहा। उसने फिर हंसते हुए बोला, किसने? मेरी दीदी ने गुस्से में कहा, भूतों ने। एक दूसरे आदमी ने बोला, जगमोहन ने बोल दिया तो तुम लोग भाग गए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही। एक बंदे ने कहा और 5 लाख लोग अपनी सरजमीन, अपने घर, अपने रिश्ते सब छोड़ के चल गए। अक्सर मन करता है कि मैं कश्मीर को अपना घर बनाऊं, वहीं रहने की कोशिश करूं। जब भी गई हूं एक बिन बुलाए मेहमान जैसा महसूस करती हूं। शायद गलती मेरी ही है। रांची, दिल्ली, अमेरिका और फ्रांस जैसे विभिन्न जगहों पर रह के मैं वापस एक भ्रष्ट, पिछड़े और कट्टरपंथी कश्मीर में जीने और खुश रहने की आशा कैसे रख सकती हूँ। फिर लगता है कि मेरा हवा महल ही बेहतर है, वहाँ से कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता। अभी मेरी भाषा जिंदा है, उसे बोल के जी लेती हूँ कश्मीर को। आगे मेरा घर कहाँ होगा मुझे नहीं पता।
इनका भी कश्मीर, राधिका कौल की चिट्ठी। आज शाम दिनभर कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अग्निशेखर की चिट्ठी। और अब कार्यक्रम में हम आपको सुनाते हैं खेल की खबरें।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में खिताब की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही भारतीय क्रिकेट टीम कल सुपर 10 के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड से 47 रनों से हार गई। भारत के सामने जीत के लिए 127 रनों जैसा मामूली लक्ष्य था, लेकिन कम उछाल वाले विकेट पर वो 18.1 ओवर में ही केवल 79 रनों पर सिमट गई। वैसे भारत तब ही मुश्किल में फंस गया था जब 8.1 ओवर तक ही उसकी आधी टीम यानी 5 विकेट केवल 39 रन पर गिर गए थे। इनमें रोहित शर्मा 5, शिखर धवन 1, सुरेश रैना भी 1, युवराज सिंह 4 और विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट हुए।
क्या ये बाहरी किनारा है? जी हाँ, बाहरी किनारा है। इश सोढ़ी बहुत बड़ी मछली को फंसा लिया है जाल में। विराट कोहली सन्नाटा मैदान में 39 पर, आधी भारतीय टीम पेविलियन में।
इसके बाद हार्दिक पांड्या भी 1 रन बनाकर चलते बने। न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर ने 11 रन देकर 4 और ईश सोढ़ी ने 18 रन देकर 3 विकेट झटके। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 126 रन बनाए। न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने 34 और ल्यूक रॉन्की ने नाबाद 21 रन बनाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 15 रन देकर 1 और सुरेश रैना ने 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपने जीत के रिकॉर्ड को बरकरार रखा और 2020 प्रारूप में 5वीं जीत हासिल की। उधर कल ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की और बेंगलोर में खेले गए ग्रुप बी के मुकाबले में बांग्लादेशी महिला क्रिकेट टीम को 72 रन से करारी मात दी। भारतीय महिला टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 163 रन बनाए। कप्तान मिताली राज ने 42 और वरिथा ने 38 रन बनाए। इसके बाद हरमनप्रीत कौर ने 40 और वेदा कृष्णामूर्ति ने नाबाद 36 रन बनाकर टीम को मजबूती दी। इसके बाद जीत के लिए 164 रनों के लक्ष्य को सामने रखकर मैदान में उतरी बांग्लादेशी महिला टीम 5 विकेट खोकर 91 रन ही बना सकी। वहीं एक अन्य मुकाबले में न्यूजीलैंड की महिला टीम ने श्रीलंकाई महिला टीम को 7 विकेट से मात दी। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 111 रनों का लक्ष्य था जो उसने 15.5 ओवर में कप्तान सूजी वेट्स के 37 और व्यू डिसमिसाल के 28 रनों की मदद से 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले श्रीलंकाई महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 110 रन ही बना सकी थी।
और अब कार्यक्रम में इससे पहले आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के 5 राज्यों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख उम्मीदवारों में प्राइमरी चुनाव की मतगणना जारी है। डोनाल्ड ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। ब्रसल्स में पेरिस हमले से जुड़े एक सुरक्षा ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर गोली चलाने वाले एक व्यक्ति की पुलिस की गोली से मौत हो गई है। फ्रांस ने पश्चिमी अफ्रीका के बुर्किना फासो की राजधानी ओगाडुगू में अर्धसैन्य पुलिस का एक रैपिड रिएक्शन दल रखने की घोषणा की है। अमरीकी सॉफ्टवेयर कंपनी एप्पल ने कहा है कि अमरीका के पूर्वज एक फोन के सुरक्षा एन्क्रिप्शन को तोड़ने को लेकर अमरीकी सरकार और एप्पल के बीच चल रहे तनाव से स्तंभित रह जाते। उत्तरी यमन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि एक हवाई हमले में 40 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। उनके मुताबिक मुस्तबा जिले में एक बाजार पर यह हमला हुआ। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोठिया। एक घंटे बाद विश्व भारती लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।